भारत का स्वतंत्रता संघर्ष राइटर बिपिन चंद्र। 1857 का विद्रोह। 11 मई 1857, दिल्ली की सड़कों पर सवेरा अभी उतर ही रहा था। जिंदगी की हलचल अभी शुरू नहीं हुई थी। तभी मेरठ से आए सिपाहियों का एक दस्ता यमुना पार कर शहर में पहुंचा। उन्हें सामने दिखाई दिया चुंगी का दफ्तर। उन्होंने उसमें आग लगा दी और फिर लाल किले की तरफ बढ़ गए। इन सिपाहियों ने एक दिन पहले ही मेरठ में अपने अंग्रेज अफसरों का आदेश मानने से इनकार कर दिया था और उनकी हत्या कर दी थी। सिपाहियों के शहर में प्रवेश करते ही दिल्ली जैसे नींद से जागी। अच्छी खासी भीड़ इन सिपाहियों के पीछे होली। सब रोमांचित था। राजघाट दरवाजा पार कर ये लोग लाल किले के भीतर पहुंचे। सिपाहियों का यह दस्ता वहां मुगल सम्राट बहादुर शाह द्वितीय से यह अपील करने आया था कि सम्राट इन सिपाहियों का नेतृत्व स्वीकार करे। हालांकि ईस्ट इंडिया कंपनी से पेंशन पा रहे मुगल सम्राट के पास उस समय इन सिपाहियों की रहनुमाई करने के लिए बचा ही क्या था। फिर भी मुगल सम्राट का नाम इन सिपाहियों के विद्रोह को महत्व तो प्रदान कर ही सकता था। इसलिए जब सिपाहियों ने सम्राट से रहनुमाई की अपील की तो वह जरा हिचकिचाए, क्योंकि वह यह नहीं तय कर पा रहे थे कि इन सिपाहियों के इरादे वाकई में क्या हैं, और फिर क्या वह खुद इस लायक हैं कि इस लड़ाई में कोई प्रभावी भूमिका निभा सकें। बहरहाल सिपाहियों ने बहादुर शाह को इस बात के लिए राजी कर लिया कि वह खुद को शहंशाह हिंदुस्तान घोषित करें। इसके बाद सिपाहियों ने दिल्ली पर कब्जा करने का अभियान शुरू किया। कंपनी के राजनीतिक एजेंट साइमन फ्रेजर समेत सैकड़ों अंग्रेज इस अभियान में मारे गए। सरकारी दफ्तरों पर या तो सिपाहियों ने कब्जा कर लिया या उन्हें नष्ट कर दिया। इस तरह सत्ता के केंद्र और प्रतीक के रूप में दिल्ली पर कब्जे के साथ 1857 के विद्रोह की शुरुआत हुई। विदेशी शासन को खत्म करने की दिशा में यह असफल लेकिन साहसिक प्रयास था। दिल्ली पर कब्जे और बहादुर शाह द्वितीय द्वारा खुद को हिंदुस्तान का सम्राट घोषित किए जाने से इस विद्रोह को एक सकारात्मक राजनीतिक अर्थ मिला। यही नहीं, इससे गुजरे जमाने की दिल्ली की ताकत और आन बान की याद भी लोगों के दिमाग में ताज़ा हुई और यह बात बहुत आस बधाने वाली साबित हुई। मेरठ का विद्रोह और दिल्ली पर कब्जा तो बस एक शुरुआत थी। इसके बाद तो समूचे उत्तर भारत और पश्चिम व मध्य भारत के कुछ हिस्सों में तो सिपाहियों और नागरिकों के बीच विद्रोह की तेज लहर चल पड़ी, लेकिन दक्षिण भारत इस सबसे बिल्कुल अलग थलग रहा। पंजाब और बंगाल पर इसका असर मामूली रहा। बहरहाल कंपनी के 232,224 सिपाहियों में से करीब आधे सिपाहियों ने अपनी अपनी रेजिमेंटों को छोड़ दिया और सेना के उस आदर्श को फूंक मार कर उड़ा दिया जिसे वर्षों के प्रशिक्षण और अनुशासन के जरिए उन्हें सिखाया गया था। यूं मेरठ विद्रोह के भी पहले से कई छावनियों में असंतोष की चिंगारियां सुलगती रही थीं। बरहनपुर की 19वीं नेटिव इन्फेंट्री ने नए किस्म की इनफील्ड राइफलों का इस्तेमाल करने से इनकार कर दिया। नतीजा यह हुआ कि रेजिमेंट को मार्च को भंग कर दिया गया। 34वीं नेटिव इन्फेंट्री का जवाब मंगल पांडे तो इससे भी एक कदम और आगे बढ़ गया और उसने अपने सार्जेंट मेजर पर गोली चला दी। उसे पकड़ लिया गया और फांसी दे दी गई। इस रेजिमेंट को भी भंग कर दिया गया। 7वीं अवध रेजिमेंट के जवानों ने भी अपने अफसरों के आदेश मानने से इनकार कर दिया। इस रेजिमेंट का भी वही हश्र हुआ जो बाकी दोनों रेजिमेंटों का हुआ था। दिल्ली पर कब्जे के एक महीने के भीतर विद्रोह लगभग सभी बड़े केंद्रों कानपुर, लखनऊ, बनारस, इलाहाबाद, बरेली, जगदीशपुर और झांसी तक फैल गया। इन सब जगहों पर लोगों में अंग्रेजों के खिलाफ गहरी नफरत थी। विद्रोहियों ने हर जगह अंग्रेज प्रशासन के पांव उखाड़ दिए। चूँकि विद्रोही सिपाहियों के पास अपना कोई नेता नहीं था, इसलिए उन्होंने स्थानीय सामंतों, नवाबों और राजाओं को अपने साथ लिया और उन्हें नेतृत्व की जिम्मेदारी सौंपी। ये लोग भी ब्रिटिश हुकूमत के हाथों काफ़ी सताए जा चुके थे, इसलिए उनमें असंतोष तो था ही, वे विद्रोही सिपाहियों के साथ आ गए। कानपुर में अंतिम मराठा पेशवा बाजीराव द्वितीय के दत्तक पुत्र नाना साहब को विद्रोहियों ने अपनी कमान सौंपी। अंग्रेजों ने नाना साहब को उत्तराधिकारी नहीं माना था और उन्हें पूना से निर्वासित कर दिया गया था, इसलिए वह उस समय कानपुर में रह रहे थे। लखनऊ में बेगम हजरत महल ने नेतृत्व संभाला, जहां अपदस्थ नवाब के प्रति लोगों में गहरी सहानुभूति थी। हजरत महल के बेटे बिरजिश कादिर ने वहां खुद को नवाब घोषित कर दिया और अपना प्रशासन स्थापित किया। सारे महत्वपूर्ण पदों पर मुसलमान और हिंदुओं को नियुक्त किया। बरेली में रोहिलखंड के भूतपूर्व शासक के उत्तराधिकारी खान बहादुर ने रहनुमाई की। हालांकि ब्रिटिश पेंशन पर गुजर बसर कर रहे खान बहादुर ने शुरू में इसमें कोई दिलचस्पी नहीं ली थी। सच तो यह है कि शुरू में उन्होंने कमिश्नर को विद्रोहियों की गतिविधियों के बारे में चेतावनी दी थी, लेकिन विद्रोह की लहर के फैलते ही उन्होंने खुद प्रशासन संभाल लिया और करीब 40,000 सैनिकों को संगठित कर अपनी मजबूत सेना बनाई और अंग्रेजों का कड़ा मुकाबला किया। बिहार में जगदीशपुर के जमींदार कुंवर सिंह ने विद्रोह का नेतृत्व किया। 70 साल की उम्र में जमींदार कुंवर सिंह को अंग्रेजों ने दिवालियेपन की कगार पर पहुंचा दिया था, इसलिए वह भीतर ही भीतर अंग्रेजों के दुश्मन हो गए थे। अंग्रेजों ने उनकी सारी संपत्ति छीन ली थी और उसे लौटाने की उनकी बार बार की गई अपीलों का भी अंग्रेजों पर कोई असर नहीं पड़ा। हालांकि उन्होंने खुद किसी विद्रोह की योजना नहीं बनाई थी, लेकिन जैसे ही विद्रोही सिपाहियों का दस्ता दीनापुर से आरा पहुंचा, कुंवर सिंह उनके साथ हो गए। रानी लक्ष्मीबाई ने झांसी में सिपाहियों की कमान संभाली। लॉर्ड डलहौजी ने उनके दत्तक पुत्र को उनके पति का उत्तराधिकारी मानने से इनकार कर दिया था और विलय की नीति क्रैक ऑफ लैप्स के तहत उनके राज्य को छीन लिया था। इस फैसले को बदलवाने के लिए रानी ने हर बड़े अफसर का दरवाज़ा खटखटाया, बार बार अपीलें की, पर उनकी बात नहीं सुनी गई। उन्होंने विद्रोह के इस मौके पर अंग्रेजों के साथ बातचीत फिर शुरू करने की कोशिश की कि अगर उनकी मांगे मंजूर कर ली जाएं तो अंग्रेजों का साथ देंगी और इस तरह झांसी की तरफ से अंग्रेजों को कोई खतरा नहीं रहेगा। लेकिन अंग्रेज अफसरों ने उनके साथ दुश्मनी जैसा बर्ताव किया। रानी लक्ष्मीबाई ने सिपाहियों का नेतृत्व स्वीकार किया। मार्च 1858 में उनके मैदान संभालने के बाद झांसी ने अंग्रेजों को बहुत कड़ी टक्कर दी। उस पर काबू पाना अंग्रेजों के लिए वाकई बहुत दुरूह साबित हुआ। विद्रोह की यह लहर सिर्फ बड़े केंद्रों तक ही सीमित नहीं रही, बंगाल की करीब सभी सैनिक छावनियों और बम्बई की भी कुछ छावनियों को इसने अपनी लपेट में ले लिया। सिर्फ मौस अछूता रहा। वहां सैनिक अपने अंग्रेज अफसरों के प्रति निष्ठावान बने रहे। यहां सवाल उठता है कि कंपनी बहादुर की नौकरी में लगे सिपाहियों ने अधिक स्थायी तौर सामाजिक प्रतिष्ठा को ठोकर मारकर विद्रोह क्यों किया? सारी सुविधाओं को त्याग कर सिपाहियों ने अनिश्चित भविष्य का खतरा क्यों मोल लिया? दिल्ली में सिपाहियों ने जो मनादी की थी वह इस सवाल का जवाब देती है। सब जानते हैं कि अंग्रेजों ने इन दिनों क्या गंदे तरीके अपनाए। पहले तो उन्होंने सारे हिंदुस्तानी सेना का धर्म नष्ट कर दिया और फिर लोगों को अनिवार्य रूप से ईसाई बनने पर मजबूर किया। इसलिए हम पूरी तरह अपने धर्म पर कायम रहते हुए लोगों के साथ एकजुट हुए हैं और हमने किसी मलेच्छ को जीवित नहीं छोड़ा है और इस बुनियाद पर हमने दिल्ली का शासन फिर से स्थापित किया है। कंपनी की सैनिक छावनियों में कई ऐसी सेवा शर्तें थीं जिनसे मुख्यतः उत्तर दक्षिण प्रांतों और अवध वर्तमान उत्तर प्रदेश से आने वाले ऊंची जाति के हिंदू सिपाहियों के धार्मिक विश्वासों और पूर्वाग्रहों को ठेस पहुंचती थी। शुरू में तो अंग्रेज प्रशासन ने सिपाहियों की बात पर ध्यान दिया और उनकी आपत्तियों को स्वीकार किया। ऐसी व्यवस्था की गई थी कि सिपाही अपने धर्म और जाति की मान्यताओं और परिवाजों के तहत रह सकें, लेकिन जैसे जैसे सेना की जिम्मेदारी बढ़ती गई, न सिर्फ देश के कई हिस्सों में बल्कि विदेशों में भी भारतीय सिपाहियों को भेजा जाने लगा, तो धार्मिक मान्यताओं के तहत उन्हें सुविधाएं दे पाना संभव नहीं रह गया। फिर एक रेजिमेंट के भीतर कई अलग अलग जातियों की मौजूदगी और जाति भेद की भावना निश्चित ही सैनिक दृष्टि से कोई फायदे की स्थिति नहीं थी। इसलिए प्रशासन ने सबसे आसान रास्ता सोचा, ब्राह्मणों की भर्ती में कमी लाई जाए, लेकिन यह कोशिश सफल नहीं हुई। 19वीं सदी के मध्य में बंगाल सेना में ऊंची जातियों का ही वर्चस्व, धार्मिक विरोध सबसे पहले 1824 में उभरा, जब बैरकपुर की 47वीं रेजिडेंट को बर्मा जाने का आदेश दिया गया, हिंदुओं के लिए तब समुद्र पार करने का मतलब था उनका धर्म नष्ट होना, इसलिए सिपाहियों ने इनकार कर दिया। आदेश का विरोध करने वाले सिपाहियों को फांसी पर चढ़ा दिया गया और रेजिमेंट भंग कर दी गई। अफगान युद्ध के दौरान तो भारतीय सिपाहियों की धार्मिक मान्यताओं को गहरी ठेस लगी। युद्ध के दौरान सिपाहियों को कैसा भी और कुछ भी खाने पीने पर मजबूर किया गया। नतीजा यह हुआ कि सिपाहियों के गांव घर के लोगों में यह भावना पैठ कर गई कि सिपाही धार्मिक मान्यताओं का पालन नहीं कर सकते। इसलिए युद्ध के बाद सिपाहियों के घर लौटने पर बिरादरी में वापस लौटना उनके लिए मुश्किल हो गया। सीताराम नाम का एक सिपाही जब अफगानिस्तान से लौटा तो न सिर्फ उसे अपने गांव बल्कि अपनी बैरक में भी जात बाहर घोषित कर दिया गया। इस तरह कंपनी की नौकरी में होने की इज्जत उसे समाज में जगह नहीं दिला सकी। धर्म और जाति कहीं ज़्यादा ताकतवर साबित हुई।